गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। परम भागवदीय पुण्य श्लोक परमात्मनीय श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज, श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 19 और 20वें श्लोक का पाठ करेंगे।
तपाम्यहमहम वर्षम, तपाम्यहमहम वर्षम, निगृह्णाम्युसृजामि च, निगृह्णामि सृजामि च, अमृतम् चैव मृत्युश्च, अमृतम् चैव मृत्युश्च, सदसच्चाहमर्जुन, सदसच्चाहमर्जुन, त्रैविद्यामाम् सोमपापूत पापा, त्रैविद्यामाम् सोमपापूत पापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्, पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्, अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्, स्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोग, तपाम्यहमहम् वर्ष, तपाम्यहमहम् वर्ष, निगृह्णाम्युत्सृजामि च, निगृह्णाम्युत्सृजामि च, अमृतम् चैव मृत्युश्च, अमृतम् चैव मृत्युश्च, सदसच्चाहमर्जुन, सदसच्चाहमर्जुन, त्रैविद्यामाम् सोमपापूत पापा, त्रैविद्यामाम् सोमपापूत पापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक, अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। हरिः ओम्। अहम् तपामि वर्षम्, निगृह्णामि च उत्सृजामि च, अर्जुन अहम् अमृतम् च मृत्युः, सच्च असत् अहम् एव। अहम् मैं ही तपामि, सूर्य रूप हुआ तपता हूँ, तथा वर्षम् वर्षा को, निगृह्णामि आकर्षण करता हूँ, च और होता है, और उत्सृजामि वर्षाता हूँ, च और, अर्जुन अहम् मैं ही, अमृतम् अमृत च मृत्युः मृत्यु, सत और असत सब कुछ मैं भी हूँ। त्रैविद्याः तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, और सोमपाहा सोमरस को पीने वाले, पूत पापाहा पापों से पवित्र हुए पुरुष, कि यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देवऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। एक देवऋण होता है, एक पितृऋण होता है, ऐसे माम मेरे को यज्ञई ही यज्ञों के द्वारा इष्ट्वा पूजन करके स्वर्गतिम स्वर्ग की प्राप्ति को प्रार्थयन्ते जो चाहते हैं ते वह पुरुष वे पुरुष पुण्यम अनेक पुण्यों के फल रूप सुरेन्द्रलोकम इंद्रलोक को आसाध्य प्राप्त होकर दिवी स्वर्ग में दिव्यान दिव्य देवभोगान देवताओं के भोगों को भोगते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है। देखिए जीवन तो एक है और अस्तित्व भी एक ही है, लेकिन मन जो है उसका स्वभाव है ये कुछ तोड़ के देखने का है। मन को मरकट क्यों कहा, ये हम लोग ऋषिकेश में रहते रहे, वो जो बंदर है उसको कुछ दो तो पहले सूंघता है, चखता है, ठीक है, फिर खाता है, नहीं तो नहीं फेंक देता है। कभी रोटी दे तो दोनों हाथ से झाड़ता है, झाड़ के फिर सूंघता है, फिर थोड़ा खाता है, ठीक है तो ठीक है। मानो पेड़ा का पैकेट लेके गए बड़े महाराज जी को देंगे, गुरु पूर्णिमा के 3 दिन पहले पहुंच गए, और वो तो ये जुलाई अगस्त में गुरु पूर्णिमा होती है, तो बारिश में सिलन लग गई, दरवाजा खुला रह गया, ध्यान नहीं तो बंदर आकर के पेड़ा लेगा, प्यार से बैठेगा, डब्बा खोलेगा, उसको सिलन की बुदवाने से फेंक देगा। ये मन का भी स्वभाव ऐसा ही है, तोड़ तोड़ करके देखने का, क्योंकि मन के देखने की प्रक्रिया में ही जीवन खंड खंड हो जाता है। जीवन तो खंड खंड नहीं है, मन ही करता है अपनी प्रकृति के कारण। एक ऐसा समझे कि प्रकाश की एक किरण है, ये प्रकाश की किरण जो आती है सूर्य के, एक कांच होता है जिसको हमने प्रिज्म कहते हैं, वो त्रिपार्श्व कांच, उसमें वो किरण को दिखाएं, क्या होगा, वो किरण को 7 भाग में विभाजित कर देंगे, उसको विब्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ऐसे 7 कलर में उसको विभाजित कर देते हैं। 7 रंगों में किरण विभाजित होती है, प्रकाश की किरण तो अविभाज्य है, प्रकाश की किरण थोड़ी टुकड़ा हो सकती है, किंतु कांच में से निकली तो विभाजित। ऐसे ही कोई भी वस्तु विषय मन के द्वारा गई वो विभाजित हो जाती है। हमारा मन भी अस्तित्व की किरण को विभाजित करता है, तोड़ देता है। महान मन जहां देखेगा वो पूर्ण नहीं देख सकता है। ध्यान दे, एक तो होता है पूर्ण, एक होता है अपूर्ण। कभी कभी थोड़ा गंभीरता से जब सत्संग सुनने आते हैं तो थोड़ा सोचते भी रहना चाहिए, ऐसे ही बैठ के नहीं सोचना चाहिए। हम रोज बोलते हैं, एक दिन भी नहीं, ओम असतो मा सद्गमय। भगवान भी कहते हैं मैं सत भी हूं, मैं असत भी हूं। तो ये अगर ईश्वर ही सब कुछ है तो असत कैसे होता है। ईश्वर कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तो बोलना चाहिए अपूर्ण सतो मा पूर्ण सद्गमय। ध्यान दें, बड़ी गंभीर बात है कि ईश्वर ही सब कुछ है तो वहां जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म भी है और मृत्यु भी है, तो ये असत क्या होता है, ईश्वर के लिए असत थोड़ा होता है। अपूर्ण सतो मा पूर्ण सद्गमय, ये ऊंचा एक भाव। तो यहां क्या कहा है कि हमारा मन जो है वो जैसे पार्श्व में से किरण विभाजित होती है, मन भी अस्तित्व को जीवन को विभाजित कर देता है। बड़ी चीजों की तो बात को छोड़ दें, मन छोटी चीज भी देखने में समर्थ नहीं है। अभी एक ये रुमाल है, हमने इसे रख दिया, अभी हमारे हाथ में एक छोटा सा वस्त्र है, तो वस्त्र को आप बोले देखो, हाँ मैं देख रहा हूं, कि पूरा देख रहे हो कि अधूरा देख रहे हो, बोलो बोलो ना, कैसे पूरा है, जो नीचे है वो कैसे थोड़ा दिखता है आपको, दिखता नहीं ना। अरे छोटा कंकर भी हाथ में रख लो तो जो दृश्य आपके सामने नहीं है वो नहीं दिखता है। एक चुटकी भर के ये चौपाटी की रेत भी ले लो, वो भी हम पूरा नहीं देखते हैं। स्थूल आंखों से भी पूरा नहीं दिखता है, तो सूक्ष्मतया उसको देखने के लिए हमारे लिए क्या औकात है। तो जो मन जो है वो छोटे से छोटे चीज को भी पूरा नहीं, क्योंकि इंद्रियां जो है वो इंद्रियां पूर्ण नहीं है, इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, वो इंद्रिय जो देखती है वो ही मन को बताती है, और मन ही उसका बुद्धि के द्वारा निर्णय करता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। क्या कहा बोलिए, आज बोलो, आज सेठ नहीं बोलिए, सेठ अजमेर गए हैं, सेठ अजमेर गए हैं, सेठ अजमेर गए हैं। पहले तो यही था, वो टेलीफोन करेंगे, वो झुंझुनू से टेलीफोन कहां करेंगे भाई बताओ, झुंझुनू से टेलीफोन करेंगे, अलवर करेंगे, अलवर वाला जयपुर करेगा, जयपुर वाला दिल्ली करेगा, दिल्ली वाला मुंबई, सीधा तो होता नहीं था। तो वैसे झुंझुने से बात आती आती, ओ क्या बात हो गई भाई, बड़े मुश्किल काम है। वो पिपली से घटा के बराना में गया, घटा के बराना में से काठगोदाम में गया, काठगोदाम में से नैनीताल में गया, नैनीताल से अल्मोड़ा आते आते सेठ अजमेर गए हैं, सेठ आज मर गए हैं। अरे भाई वो तो अजमेर गए हैं, हमने रुई ले ली है, तुम भी रुई ले लेना, हमने रो लिया है, तुम भी रो लेना। अरे ऐसे कैसे होता है। एक सज्जन है हमारे दोस्त है, उनके अभी डेथ हो गई, उनको गिरीश भाई लोग बोलते थे, वो गिसाई बोलते थे। अब गिरीश भाई ये गिसाई कैसे हो गया, अनंत काका अनका हो गए, उमेद बेन मेदेन हो गई, वामन काका वानका हो गए, बिंदुराय बिंदा हो गए। ये अपभ्रंश मन को ऐसे करने की आदत है, धीरे 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 हो जाएगी चुटके, और चुटका थोड़ा होता है, छोटा काका है, छोटा काका को चुटका बोल देते हैं। तो ये अभ्यास है मन का, इजी गोइंग, उसके भीतर नहीं जाने का। तो एक हिस्सा, बाकी हिस्सा तो अनदेखा है, एक वस्त्र रख दिया, आप ऊपर से देख रहे, नीचे का भाग थोड़ा देख रहे, तो पत्थर भी नहीं देखते। तो आप अनुमान करेंगे कि क्या नहीं दिखाई पड़ता है, हाथ में कोई वस्तु रख दी तो अनुमान करेंगे क्या नहीं दिखाई पड़ता है। ये जो अनुमान होता है वो भी वास्तविक नहीं होता है, ये कल्पना है, ऐसे हो सकता है। ऐसे यहां पर जो पुष्प रखे हैं तो आप क्या अनुमान करेंगे भैया, मल्लीपू है, पिचीपू है, मोगरा है, चमेली है, ये क्या है, ये हमारा क्या क्या सुंदर फूल है। बहुत नजदीक आकर देखने से पता चलेगा मल्लीपू नहीं है, पिचीपू भी नहीं है, मोगरा भी नहीं है, सेवंती भी नहीं है, तो ये क्या है भाई, ये गलाडिया है। ओ तो अनुमान जो है वो सत्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो कोई एक बात पहले से जमा है तो उसी बात की कल्पना हम कर लेते हैं कि ये हो सकता है भाई। गोल था खाने के लिए कुछ, तो गोल था तो क्या था, तो लड्डू ही होगा, जरूरी क्या है गोल है, गोल हो, वैसे भी जलेबी भी तो गोल बनती है, तो गोल क्या था, जलेबी थी ना लड्डू था, शायद पेड़ा हो सकता है, वो न जलेबी था न तो वो पेड़ा था न लड्डू था, क्या था, अरे वो रसगुल्ला होगा तब, अरे नहीं था यार, तो गुलाब जामुन गोल होगा, वो भी नहीं था, तो क्या है, तो संदेश था। ये एक गोल के पीछे कल्पना क्या करते हैं, 100 चीजों में मन दाएं बाएं भागता है, वस्तुतः सत्य की प्रतीति नहीं होती है। मन के द्वारा हमने कभी सत्य की प्रतीति नहीं कर सकते, कि मन का अपना स्वभाव ऐसा है तोड़ना जोड़ना। मन जो है अंश को देखता है, पूर्ण को नहीं देखता है। पहली बात से तो ठीक समझ लें कि यदि एक बात ठीक समझ में आ जाए कि तो ये हम इन धर्म के तत्वों को जान सकते हैं। क्या कहा है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ये धर्म जो है वो ऐसे ही साधारण बाजार में, जैसे कल परसों था गुड़ी पड़वा, तो दादर के सामने वो 5 रुपया में नीम के 5 पत्ते मिलते थे, एक छोटी पत्ती है 5 रुपया। अरे भाई ये क्या बात है, बोले आज तो यही दाम है, कल की बात छोड़ो। ओ मुझे पता नहीं बंबई में ऐसा नियम है क्या, वो गुजरात में मेरे को एक बार बहुत साल के पहले एक बार वो दिवाली में रहने का मौका हुआ, बचपन बीत गया था, जब जवान हो गए सन्यास के बाद में, हमको महाराज जी रंगोली डालने का बड़ा शौक, तो ये किसी को पता नहीं होना, सब सो जाएंगे तब रंगोली डालेंगे, सवेरे देखेंगे आ कितना सुंदर है, कौन बनाया कौन बनाया, लोग बोलते रहेंगे, बाद में पता होगा स्वामी जी ने बनाया। तो रात में जब सब सो गए हम रंगोली बना रहे हैं, रात में ऐसा एक बजते बजते दो बजते बजते राम रस राम रस। अभी राम रस क्या होता है वो मुझको पता है, राम रस तो हमारे यहां भोजन में नमक होता है, वो आधी रात में राम रस क्यों बोलता है? वो कहते हैं नया साल जब चालू होता है दिवाली के दिन दूसरे दिन मुहूर्त में नमक खरीदना चाहिए। अभी वो नमक की छोटी पुड़िया है मगर वो 10 रुपए की देता है, 2 चम्मच नमक को 10 रुपए में दे रहा है। बताइए क्या बात है। तो ये कोई कोई चीज है उसको एक विचित्र करके देखने का हमारा अभ्यास, ये धर्म को भी समझने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। मन की सामर्थ्य नहीं है कि वो पूर्णता से देखे, मन का स्वभाव ही नहीं है कि उसकी पूर्णता में प्रवेश करे, क्योंकि वो आंख से देखता है। ध्यान दें, आंख से देखता है, कान से सुनता है, किंतु आंख से सुन नहीं सकता है, कान से देख नहीं सकता है। आंख से अगर सुनने का प्रयत्न करें, कान से देखने का प्रयत्न करें, पागल हो जाएंगे। खेपार हाट बाजार, रामप्रसाद जी कहते हैं पूरा विश्व है पागलों का बाजार है। तो अगर कोई आंख से सुनने का तो क्या होगा भाई? मन के स्वभाव में संबंध में पहली बात तो यह है कि मन किसी भी वस्तु विषय को समग्रता से नहीं देख सकता है। द टोटलिटी कैन बी ऑब्जर्व कैन बी ग्रेस्ड बाय द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल माइंड। तो आज तक किसी व्यक्ति के मन ने किसी वस्तु को पूर्णता से नहीं देखा, तब क्या करना? तो ये शास्त्र को कैसे देखेंगे? दुनिया में दो तरह के शास्त्र, एक तो वे शास्त्र हैं जो लोगों ने कहे हैं जिन्होंने मन को मिटाकर पूर्ण जाना, एक वो शास्त्र हैं जो उन लोगों ने कहे हैं जिनको मन को व्यवस्थित करके शिक्षित करके अध्ययन से विचार से मनन से चिंतन से तर्क से अनुभव से। ठीक है, एक तो रास्ते चलते लोग हैं कुछ कुछ बोलते रहते हैं, दूसरे हैं जो गहन चिंतन करके बोलते हैं। ये दोनों बात को देखना चाहिए, क्योंकि अगर चिंतन नहीं हो मनन नहीं हो निधिध्यासन नहीं हो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, जो कुछ भी हम स्वाध्याय करते हैं तो प्रवचन सुनते हैं या प्रवचन करते हैं तो ये पहले उसको थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये जब हम स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि 3 वस्तु को याद रखो, आप भी याद रख लें कोई चिंता नहीं है। बोलिए IRA IRA आई होता है इम्प्रेशन, बोलिए आई से इम्प्रेशन, ऐसा कीजिए इम्प्रेशन। दूसरा है रिपीटेशन, तीसरा है एसोसिएशन। तो इम्प्रेशन रिपीटेशन एसोसिएशन, ये क्या होता है इम्प्रेशन रिपीटेशन एसोसिएशन? अगर आपने कक्षा में जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल में जाने के पहले वो किताब खोल करके कुछ पढ़ ले, देख ले आज टाइम टेबल के मुताबिक आज मैथ्स में क्या पढ़ाएंगे, साइंस में क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश में कौन सा है, गुजराती मराठी क्या है, तो घर में से देख लिया। समझ में नहीं आए तो चिंता नहीं, जस्ट गो थ्रू। अभी जब स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे तो बुद्धू नहीं रहेगा, क्योंकि देख के आया है, उसको पता है कि ये है। तो ये इम्प्रेशन के बाद रिपीटेशन हो गया, शाम को आकर के होमवर्क कर ले पक्का हो जाएगा। जैसे कि आपको बहुत सरल बात में समझा सकते हैं, मुझको पता नहीं आजकल कौन सा सिनेमा चल रहा है, तो कोई मान लीजिए कोई XYZ सिनेमा चल रहा है, हमको एक सिनेमा का नाम पता है, उसका नाम है शोले। वो शोले कोई सिनेमा थी तो लोगों ने 50-50 दफे देखी, क्या उसमें भूत प्रेत था मुझे पता नहीं। तो मान लीजिए कोई एक सिनेमा है तो सिनेमा किसी ने देख ली, और किसी ने देख ली सिनेमा, देख करके आपको कहानी बताई, जानते हो उसमें ऐसा है, हाँ ऐसा है, वो बड़ी रुचि से देख करके आया था और आपको इतनी रुचि से कहानी सुना रहा है, तो आपने उसको रुचि से सुना है, इतनी रुचि से सुना है कि आपके मन में उसकी छाप हो गई। फिर आप खुद देखने गए तो आपको कहानी तो सुन रखी है पूरा, तन है मन है तमाम को एकाग्र करके देखते हो और फिर आपको इतना बढ़िया लगा कि एक दोस्त को फिर कहानी सुना दिया। पहले सुना था इम्प्रेशन, बाद में देखने गए रिपीटेशन, किसी को सुना दिया एसोसिएशन। उसको भूल सकते हो क्या? बोलिए नारायण, नहीं भूल सकते। तो हमें भी जो एक शास्त्र तो वो है जो गहन चिंतन के बाद में, अनेक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में, अनेक संतों के चरण में बैठने के बाद में और आत्मचिंतन करने के बाद में, देश विदेश के जो विद्वान हैं उनको श्रवण करने के बाद में, उनको मनन करने के बाद में, उनको अध्ययन करने के बाद में लिखा गया धर्म उन लोगों का वक्तव्य है जिन्होंने मन को मिटा करके जाना है, जिन्होंने मन को प्रिज्म तोड़ दिया है। क्योंकि वो बीच में जो कांच है त्रिपार्श्व कांच, उसमें से सूर्य की किरण निकलेगी तभी तो सात भाग होगा ना, उसमें से निकले ही नहीं तो वो विच्छिन्न नहीं होगी, वो त्रुटेगी नहीं। तो मन को जो है उसको अविभाज्य बिना बटा हुआ अखंड दर्शन, ट्रेन किया हुआ, प्रशिक्षित, समझाया, सिखाया, पढ़ाया, एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है। क्योंकि कोई भी फिलोसॉफी है वो कंप्लीट नहीं होती है। हर फिलोसॉफी कहते हैं दर्शन शास्त्र को, और दर्शन शास्त्र को व्यक्ति अपने ही ढंग से देखता है। जिस माहौल में रहता है वो, कोई इंसान ढीला ढाला चलता है तो वो रेलवे का स्टेशन मास्टर क्या बोलेगा? अरे मालगाड़ी की जैसी चलता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने मालगाड़ी छुक 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 चलती है तो इंसान को भी वो मालगाड़ी के जैसी चलता है ऐसे ही बोलेगा। तो जो तत्व चिंतकों ने अपना तत्व चिंतन हमें कहा, वो जिस माहौल में रहे, वो जिस परिसर में रहे, वो जिस विचार में रहे, जिस व्यवहार में रहे, जिस परिस्थिति में रहे, तो उनके अपने निजी जीवन की, तो फिर वो उसी ढंग से समझाता है। फिर उसमें आपका सोक्रेटिस भी बाद नहीं। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये सारे नाम कुछ पता है कि नहीं। अरस्तु है, एक तो है प्लेटो है, एक कांट है। कांट तो जो होते हैं वो सैमुअल कांट है, जर्मनी के होते हैं, और हीगल है। तो ये तमाम के जो विचार हैं, जैसे हमारे यहाँ रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, हमारे वल्लभाचार्य हैं, ऐसे ये सब नाम विदेश के होते हैं। तो ये तमाम लोगों ने जो कुछ कहा वो अपनी सूझ कहां तक पहुंचे वैसे कहा। वो पुरानी बात तो आपको पता है, आंख से नहीं देखने वाले चार पांच लोग जमा हो गए, एक ने हाथी को पकड़ा है पांव से, आहा हाथी तो कंबे के माफी कहे, दूसरे ने कान को पकड़ा बोले बड़े सूप के माफी कहे, तीसरे ने बदन को हाथ लगाया बोले हाथी दीवार के माफी कहे, किसी ने पूंछ को पकड़ा अरे नहीं नहीं हाथी रस्सी के माफी। कोई भी गलत नहीं है, सभी ठीक है, किंतु पूर्णतया उसको नहीं जान पाए। तत्व चिंतकों का भी इससे कोई अच्छा हाल नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो कहना है वो दूसरे व्यक्ति के कहने से मेल नहीं खाता है। एक कहते हैं द्वैत है, दूसरा कहते हैं अद्वैत है, तीसरा कहते हैं द्वैताद्वैत है, चौथे कहते हैं शुद्धाद्वैत है। अरे क्या है, वो एक ही है, वो दूसरे है नहीं। हमारे छलिया बांगे बिहारी वही है, वो टेढ़े खड़े हैं ऐसे ही। तुम जाकर देख लो हमारी अवस्था कैसी है। बगीचे में चले गए, वहां पर आम का बगीचा है, पके हुए आम है, इतने मधुर हैं, हाथ लगाने के पहले गिर जाएंगे। तो आपको आम खाना चाहिए? आपके दोस्त की है, हाँ मधुबाबू की अपनी बगीचा है, हम लोग को जैसे का अमरावती जैसे लेके जाते हैं, बस भर के चलो अमरावती जाएंगे, आनंद करो, तो ये अपना बगीचा में इतने आम चलो खाओ। तो मधुबाबू को पूछेंगे, मधुबाबू ये पेड़ किसने लगाए थे? तो फूल हर साल इतना आता है क्या? वो डालियां भी बड़ी सुंदर है, खाद कौन सी डालते हो, पत्ते कितने बड़े हैं, ये चापलूसी करना है आम तोड़ के खाना है? अरे मेरे प्यारे, एक राजा के यहां एक कवि आए थे, वो कवि बहुत अच्छी कविता, राजा बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा भाई इनको लेके जाओ। इसी समय सवेरे कोई 10-11 बजे का समय था, और उनको बोलो जितना धन बटोर पाए शाम ढलने के पहले तो वो उतना लेकर के जाए। वो कवि ने तो कभी 5 किलो सब्जी नहीं उठाया था, और जब धन बटोरने की बात है तो बोले रुको रुको बाजार से आता हूं, वो 100 किलो 1 क्विंटल चीनी भरने का बड़ा बोरी लेके आए, बोले इसमें भरूंगा। तो लेकर के उन्होंने गोडाउन में गए, देखा लकड़ी कहां रखी सोने की, वो सारी भर ली, वो 100 क्विंटल की हिला भी नहीं उससे, हिलने वाला कहां था, बोले इतना क्या है थोड़ा निकाल देता हूं। फिर निकाला 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 निकाला, भरते भरते निकालते निकालते कमर में बहुत दर्द हो गया, शाम को 4 बज गए। फिर बोलते हैं अरे लोग क्या बोलेंगे, तू दिन भर रहे राजा के दरबार में कुछ भी नहीं लाए, बोले कीमती चीज ले लो लकड़ी सब निकाल दो, हीरा डाल दो, हीरे का भी यही हाल हुआ। फिर कुछ बोले थोड़ा मोती लेते हैं, थोड़ा हीरा लेते हैं, थोड़ा चांदी लेते हैं, उठाया नीचे से बारदान फट गया। हमने अपने जीवन में क्या पाया, कृष्ण बड़े दुखी है। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने जीवन को जो टटोलते हो वो ऐसे आधे अधूरे में टटोलते हो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ प्राप्त है, तुम्हारे लिए देखने के लिए आंख है, तो आंख से क्या देखते हो आंख देखती है, कान से क्या सुनते हो कान सुनता है, आंख का देखा गलत नहीं है, कान का सुना भी गलत नहीं है, किंतु उसको दोनों को मिलाकर के चेष्टा करो, उसको भिन्न भिन्न मत करो, आंशिक मत देखो, अपने अनुभव को तुच्छ मत करो। धर्मों में विवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि जो विवाद होता है वो दर्शनों में होता है, वो कहने वालों में होता है, वो बताने वालों में, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से बताता है, वो अपनी बुद्धि जिस तरह में है उसी तरह में रहता है। क्योंकि कृष्ण के और मोहम्मद के बीच में क्लेश नहीं है, महावीर और बुद्ध के बीच में भी कोई क्लेश नहीं है, राम और शिव के बीच में क्लेश नहीं है। महादेव सतत जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति कारत कहत राम नाम। अरे महादेव सतत जपत कहत राम नाम, मैं तो महादेव का भगत हूं, मेरा राम से कोई मतलब नहीं। क्या पागलपन है, इन लोगों का राम और कृष्ण का क्लेश नहीं है, शिव और राम का कृष्ण नहीं है, मोहम्मद का और राम का भी कृष्ण नहीं है, महावीर बुद्ध का नहीं है, किंतु नीचे जो है हम लोग बैठे हुए अपनी बुद्धि से क्लेश करते हैं। धर्म जब जनते हैं तो पूर्ण होते हैं, क्योंकि धर्म किसने जन्म दिया है, मोहम्मद ने दिया, ईसा मसीह ने दिया, बुद्ध ने दिया, महावीर ने दिया, राम ने दिया, कृष्ण ने दिया, वो गीता गीता तमाम कहने वाले एक ही रहे। अरे देखिए ध्यान दें, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, और जब महाभारत पूरा हो गया सब सब कुछ स्वस्थ हो गया, एक दिन शाम यमुना के तट पर श्री कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे, तो अर्जुन ने बड़े विनीत भाव से कहा प्रभु ये युद्ध के मैदान में आपने हमको कुछ सुनाया था वो इतना इंस्पायरिंग था कि मेरे रोम रोम आज भी पुलकित होते उसकी स्मृति से, मगर उस समय मेरे मन की अवस्था कुछ ठीक नहीं रही, अभी मैं स्वस्थ हूं, फिर से सुनाओ। तो भगवान जोर से हंसे, अरे वो सिचुएशन पैदा होनी चाहिए, वो परिस्थिति पैदा होना चाहिए कि जिस परिस्थिति में मेरे भीतर से गीता का प्रागट्य हो और तुझको मैं समझा सकूं। वो कहते हैं ये बात अलग है, हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे थे तो उन्होंने कहा महाराज मैं सुना दूं, वो बोले आपने आपको क्या संबंध है, बोले जब आप गीता सुना रहे थे मैं रथ के ऊपर ध्वज में बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था तो मुझको सब याद है। हाँ क्या बता बुद्धिमताओं वरिष्ठम, तो भगवान ने कहा सुनाओ, तो एक हनुमान गीता एक नई बन गई, एक अर्जुन गीता नई बन गई, एक उद्धव गीता नई बन गई, इतनी गीताएं बन गई। तो एक विचार क्या है, मन जब तक नहीं मिट जाएगा, वक्तव्यों के भीतर छिपा रहेगा, तो ये तब तक जो सत्य है उसको हम नहीं जान पाएंगे। दूसरी अड़चन क्या है, कि अड़चन ये है कि जब एक दूसरे के बीच में जो विरोध होता है तो वास्तविक सत्य है वो कहीं डूब जाता है, विरोध होने पर डूब जाता है। तो यहां कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण बड़ी बहुत सुंदर बात कहते हैं, तपा म्यहम अहम वर्षम, देखिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले मैं तपाता हूं, एक तरफ बोल रहे मैं तपाता हूं, दूसरा बोलते मैं वर्षाता भी हूं, ये क्या कोई तालमेल है क्या। अरे जब आग लगे तो क्या करोगे, पानी डालोगे कि नहीं डालोगे, जब आग लगती है तो तुम पानी डालोगे डालोगे, तो ये आग और पानी का दोनों का संबंध क्या है। कृष्ण बोलते मैं तो आग भी हूं पर मैं तो पानी भी हूं, ये विरोध होने वो भी एक ही है, और हम विरोध को विरोध करते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं विरोध को विरोध मत करो। निगृण्यामि सृजामि च, बोलते हैं निगृण्यामि सृजामि च, उसृजामि वर्षाता हूं, आकर्षण भी करता हूं। अरे वो ले भी लेता है और दे भी देता है। कृष्ण, कृष्ण का भाव बड़ा सुंदर है भाई, बहुत अद्भुत भाव है। वो देखिए, वो गाय को भी चराने जा सकते हैं, और जो घोड़े है ना, महाभारत के युद्ध में जब तमाम लोग सोए पड़े रहते हैं या अपने अपने घावों को साफ करते हैं, हमारे कृष्ण है वो अपने पीले स्वर्णमय पीतांबर में नरम नरम घास लाकर के घोड़ों को खिलाते हैं। देखिए इनकी गतिमति क्या है, वो स्वयं में नहीं है, वो एक दिव्य अवस्था में है। वो अर्जुन का रथ चला सकते हैं, सुदर्शन चक्र भी हाथ में ले सकते हैं, उतना नहीं है वो। दुर्योधन है ना, दुर्योधन, वो उसकी मां ने कहा चिंता मत कर। हाँ, तो आधी रात में यमुना जी में स्नान करके निराभरण निर्वस्त्र होकर के आना, मेरी आंख में पट्टी बनी है, मैं शिव भक्तिणी हूं, मैं पट्टी खोल दूंगी, तुझको देखूंगी, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। आधी रात में कृष्ण चले गए। कहां चले गए? रस्ते के बीच में। हाय, सेम सेम, तू ऐसे जा रहा है इतना बड़ा, वो ऐसा करता है। मेरी मम्मी ने कहा, अरे तेरी मम्मी नहीं है, वो बूढ़ी हो गई है, तू पैदा हुआ था इतना छोटा, तुझको देखा था, हाँ अभी तू खूंट हो गया है, इसे नहीं जाना, ले केला का पत्ता बांध ले। देखिए क्या कृष्ण करते हैं, उनकी मां लड़ गई, वो कृष्ण ऐसा ही है। ओ दुर्योधन बहुत दुखी हो गया, वो भीष्म ने, वो भीम ने प्रतिज्ञा की मेरी जांघ तोड़ने की, जबरदस्ती कृष्ण ने मेरी जांघ को कच्चा रखवा दिया, मैं क्या करूं? तो भीष्म ने कहा चिंता मत कर, भानुमति को तुम्हारी धर्म पत्नी को ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे भेज देना, जब मैं ध्यान से खुलूंगा तो 3 बजे मैं अपने आंख खोलने पर उसको आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव, तेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है, देखता हूं मेरे ब्रह्मचारी का। भगवान कृष्ण रात 2 बजे आ गए, कृष्णा चलो कहां जाना है, थोड़ा इवनिंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। वो सिर में पगड़ी बांध करके हाथ में एक वो हरिकेन लेकर के डंडा लेकर के चले, और रात 3 बजने के पहले 2:30 बजे ही उसको बोला जाके ऐसे करना, और बाहर पीछे खड़े हो गए, पक 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 पक, वो मुर्गा बुला दिया। मुर्गा बोलने से भीष्म समझे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो गया। आंख खोली, द्रौपदी घूंघट निकाल के बैठी हुई है, तो बोला अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी ने घूंघट आया, दादाजी थैंक यू। अरे तू कहां से आ गई? बोले मुझको प्रभु लेके आया। वो छलिया वैसा है, कहां दिखा? कृष्ण कहते हैं मैं तो गर्मी भी हूं, गर्म होकर के तपाता हूं, सूर्य बन करके आकर्षण भी करता हूं, और फिर वर्षाता भी हूं, दोनों विपरीत है। अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत भी हूं और मैं मृत्यु भी हूं, कैसे हो सकता है? कोई कहते मैं दिन भी हूं, मैं रात भी हूं। एक थोड़ा सोच लो, अगर दिन है तो रात कैसे हुई? पर ये नहीं भूलना चाहिए, ये दिन है ना, इज बीन सैंडविच बिटवीन टू रात। सैंडविच खाते हो ना, पाव वड़ा, हाँ ऊपर भी पाव नीचे भी पाव बीच में वड़ा खाते हो कि नहीं? तो सैंडविच खाते हो, एक नीचे ब्रेड है ऊपर ब्रेड है, बीच में चटनी लगती है ना, थोड़ा थोड़ा एक धनिया पत्ता, थोड़ा अदरक, थोड़ा एक मिर्ची, हींग, नमक, थोड़ा मिठाई डाल देते हैं, थोड़ा नींबू डाल देते हैं, सुंदर से सैंडविच, थोड़ा क्यूकुम्बर डाल देते हैं, थोड़ा टोमेटो डाल देते हैं, खाने वाले थोड़ा प्याज भी डाल देते हैं, आहा बहुत सुंदर है। तो क्या है, तुम चटनी हो, तुम ब्रेड हो? तो बोले मैं तो चटनी भी हूं, मैं ब्रेड भी हूं। कैसे हो सकता है भाई? मुझे आप बात बताओ, आपकी उम्र क्या होगी भाई साहब? 40 हो गया। अभी आप बच्चे हैं कि बूढ़े हैं कि जवान हैं? बड़ा गड़बड़ प्रश्न है, बोलिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं कि जवान है, बोलिए। हाँ, वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। तो ये वृद्ध बनना कब चालू हुआ? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है। हम कब जवान थे, कब बूढ़े हो गए? तो हमारे ये दिन जो है वो ढलते ढलते रात हो जाती है, और रात ढलते ढलते दिन हो जाता है। तो तुम दिन हो कि तुम रात हो? अरे जब दिन के अंत में रात हूं और रात के अंत में दिन हूं, ये कृष्ण जो कह रहे हैं बड़ा एकदम सत्य कह रहे हैं, किंतु हम लोगों ने अपने आप से दिन को दिन कहना, सत्य को सत्य कहना। यौवन को वृद्धावस्था नहीं कह सकते, किंतु वृद्ध को पूछो तुम अपने यौवन से वृद्ध कब बने, ये तो पता नहीं।
हाँ इसे पहले दांत गिर गया, जैसे दशरथ जी ने कहा ना कि एक सफेद बाल दिखा, एक तो दिखा तब, उसके पहले तो हो गए थे, तुमने देखे नहीं थे, वो तुम्हारी कमजोरी है प्यारे, वो तो इसलिए क्या कहा भाई। ये मुझे बात बताएं, ये भगवान क्या कहते हैं, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पीवा अंतर बहिच तत् सर्वम व्याप्त नारायण स्थित। तो ये कहते अमृत तो मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, अब तो क्या सोचना चाहिए, राम जो राम है तो रावण क्या है। अब सोच लीजिए आपने कि भाई आप वो हमारे ब्रिज बिहारी चौधरी महाराज बोलते हैं, मैं तो 35 साल से कथा सुन रहा हूं, अरे आप भी तो सुन रहे हैं 40 साल से कथा, अपने आप को टटोलो, राम कथा में से रावण को निकाल दो, सोच लो भाई। बड़े मेरे प्यारे बुजुर्ग लोग सब बैठे हुए हैं, कहिए मुझे राम कथा में से रावण को निकालो, तो निकाल दो तो राम की कथा में कुछ मसाला रहेगा। अरे बिना रावण के तो राम नहीं हो सकते, और बिना राम के रावण भी नहीं हो सकता है, तो कौन महत्व का है, महत्व किसका है, राम का है कि रावण का है। अरे दोनों का है, इक्वल है, संपूर्णतः है, भले राम का सिर एक हो और रावण के 10 हो, फिर भी बिना रावण के राम का यश नहीं है। अरे कहते हैं राम और रावण का युद्ध कैसा है, राम रावण के युद्ध के जैसे है, राम रावण का युद्ध कैसा है, राम रावण के युद्ध के जैसा है, वो ऐसा युद्ध कभी ना हुआ ना होगा। तो राम जो राम है वो रावण भी है, तो रावण में भी नहीं, तो ध्यान दें ये बड़ी गंभीर बात है, ये छलना नहीं कर रहे हम आपसे। देखिए एक जीवन के पाठ का राम एक भाग है, राम कथा का, तो रावण दूसरे हैं। तो जब रावण घायल होकर गिरा पड़ा है, राम जी महाराज ने ये हमारे जो लक्ष्मण है उसे कहा जाओ और उसके पास से ज्ञान प्राप्त करो, जो बहुत बड़ी बात है। देखो क्योंकि राम की जो संस्कृति है वो अयोध्या की संस्कृति है, रावण की संस्कृति वो श्रीलंका की संस्कृति है। जो क्रिकेट टीम में खेलता है वो हमारे भारत की टीम में खेलने वाला, वो कभी कुछ दिन जाकर के वो अयोध्या क्या बोलते हैं हमारा लंका के टीम में भी खेल के आ जाए, उसको सीक्रेट पता हो जाएगा, इनका सीक्रेट क्या है, उनका भी सीक्रेट क्या है। तो दोनों को जानना चाहिए पूर्ण करने के लिए, हम राम ही राम को जाने तो कैसे, जो भविष्य में राजा बनने वाला है उसको पूर्व का ज्ञान भी होना चाहिए, उसको पश्चिम का ज्ञान भी होना चाहिए। हाँ और वो लक्ष्मण गए तो सिर के पास खड़े रहे, रावण ने कहा उधर नहीं, चरण के पास खड़े रहो तब कुछ मिलेगा। हाँ उधर नहीं मिलता है, और क्या क्या पूछा है, बहुत प्रश्न पूछे, वो एक प्रश्न मुझको बहुत प्यारा लगता है, हम लोग को भी जानना चाहिए वो रावण ने क्या कहा था। ये सब्जेक्ट इसका नहीं है, फिर भी जानना चाहिए। रावण ने कहा था नहीं स्वस्व उपासित को ही पुरुष स्वेद, वाल्मीकि रामायण की बड़ी सुंदर घटना है, कहा कल नहीं स्व स्व उपासित, स्व बोलने से कल भी होता है, स्व बोलने से आत्मा भी होता है, स्ववासरे विरामो भविष्यति माने कल छुट्टी रहेगी, प्रतिपन्न निमित्तो एक प्रतिपन्न, ये प्रतिपदा होने के कारण ये संस्कृत स्कूल होते हैं ना, उसमें प्रतिपदा के दिन छुट्टी होती है, ग्रहण के दिन तो होती है, अमावस्या की और छुट्टी, पूर्णिमा के भी छुट्टी, एकादशी की छुट्टियां लेना है बहुत, तो संस्कृत स्कूल का टीचर नहीं तो स्टूडेंट बन जाओ, छुट्टी ही छुट्टी होती है वहां पर। तो वो क्या कहे वहां पर, बड़ी सुंदर बात की उन्होंने, ये कहा कि ये नहीं स्वस्थ उपासित को ही पुरुष स्वेदो, कल मत बोलो क्योंकि कल किसी का आता ही नहीं है। रावण खुद कहते हैं कि मैंने मन में सोचा था कि मैं श्रीलंका से इंद्र के भवन तक एक ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड बनाऊंगा, कल करूंगा, अभी तक नहीं करा, देखो मेरा हाल है। फिर एक मैंने सोचा था श्रीलंका के चारों ओर एक क्षार समुद्र है, क्षार बोलने से नमक के जल का समुद्र, उसको मैं क्षीर समुद्र करूंगा, दूध का दरिया बना दूंगा, कल। और रावण के लिए कोई असंभव बात नहीं है, वो कैलाश को उठा सकता है, वो रावण है,
इतना बड़ा ज्ञानी है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित तले गले विलंबलुंबिताम भुजंग तुंग मालिताम डमट 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 निनादवट डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनु तु न शिव स्वयं जटाकटा संभ्रम भ्रमण्य लिंपनी जरी विलोलवी शिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी। ये रावण की रचना इतने साल, मान लीजिए रावण कोई कल्पना का तत्व हो तो 10,000 साल में शिवजी की ऐसी कोई स्तुति नहीं बनी है, अद्भुत। तो ये रावण कोई कम ज्ञानी नहीं है, संस्कृत का आचार्य है, क्योंकि भगवान शिव का भक्त है, भगवान शिव है व्याकरण के आचार्य है। तो ये भगवान जो राम है वो लक्ष्मण से कहते हैं ज्ञान लेके आओ। तो हमारे यहां पर वो क्या कहा उन्होंने, मैं तो अमृत भी हूं और मैं तो मृत्यु भी हूं, तो दोनों कैसे हो सकते, अमृत है तो मृत्यु कैसे होगा। जहां मृत्यु होती है वहीं से नया जन्म भी प्रारंभ होता है, और जहां अमृत का शेष है वहां मृत्यु हो जाती, अहंकार जनित जीवन है। तो हमारा इतना गहरा संबंध है कि हम इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते। एक किनारा है, बोले नहीं भाई हम तो गंगा के पूर्व किनारे में रहते हैं तो पश्चिम किनारा, बट नो कंसर्न विद दैट, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो किताब है, ये किताब का ये भाग भी है और ये भाग भी है। बोले मेरे को तो यही चाहिए ये नहीं चाहिए, अरे कैसे होता है भाई, तो दोनों चाहिए। आपको दो आंख पसंद है कि एक, बोलो नारायण। दो हाथ पसंद है कि एक, बोलो। दो पांव, अरे दो पांव इसके बिना गुजारा नहीं है। एक पांव जमीन पर रखे तो दूसरा उठा सकते हो, दोनों पांव हवा में किए तो गिरना है, वो कूदने वाला होता है, वो हिरण कर सकता है, किंतु वो जो कूदता है तो फिर जहां से कूदता है दो पांव से ऊपर में फिर जाकर के चार पांव लगा देता है वहां पर, बड़ा मुश्किल कार्य है। कहते हैं कि किसी ने ये भी प्रश्न यहां पर पूछा, महाराज जी ये मन के बारे में कुछ कहो, ये मन क्या होता है। देखिए आप मन की परिभाषा जानना चाहें तो मन का अर्थ होता है मनन, विचार चिंतन, जो दिखाई पड़े चिंतन की धारा को जोड़ना। हमको एक पुष्प दिखाई पड़ता है, फूल दिखाई पड़ता है, तो फूल दिखाई पड़ने पर उसके बारे में हम 20 बार सोच सकते हैं, कौन सा रंग है, फूल का नाम क्या है, पेपी है, पोपी है, डेजी है, फ्लोर्क है, फोटोलाका है, पैंजी है, फिटूनिया है, आपको नाम भी नहीं पते होंगे सभी है, बड़े सुंदर सुंदर नाम है, डैलिया है। तो ये तमाम फूल फूल है, तो ये तमाम जो अवस्था है तो ये फूलों की, तो इन तमाम पुष्पों को हम एक कोई पुष्प देखे तो पता करेंगे कि ये गुलाब है कि मोगरा है, जुई है कि जाई है, ये कमल है कि लीली है। तो एक मन को एक वस्तु दिखने से बहुत सारे विचार, तो ये मन जो है उसको अगर हम कह दें बहुत सुंदर है, सूर्योदय हो रहा है, कितना सुंदर है, वो ऐसे बोल दिया तो क्या हो गया, सूर्योदय हो गया तो बहुत सुंदर है, वो किसको सुंदर लगता है, वो देखने को वाले को सुंदर लगता है भाई, जिसके आंख में कमी है आंख में कमजोरी है उसको तो धब्बा दिखेगा, वो क्या दिखेगा, उसके लिए आंख सुंदर है। एक चीज है, क्या है वो, चाट, इमली की चाट, बोलिए इमली की चाट, मुंह में पानी आता है ना, तो इमली की चाट है, भेलपूड़ी है, पानी पूड़ी है, तो ये बोलने से एक को आनंद होता है, खुशी होती है, किंतु दूसरा जिसको शरीर में बहुत खुजली है उसको दे दो तो मुश्किल हो जाएगा। गुलाब जामुन तो अच्छे हैं, रसगुल्ला भी अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छा है, जिसको डायबिटिक्स है 450 फास्टिंग शुगर, उसको एक 4-5 रसगुल्ला खिला वो तो मुश्किल कर देंगे। तो एक वस्तु, एक छुरी है, छुरी उससे पेट काट करके डॉक्टर सर्जरी करता है, माता के गर्भ में जो शिशु है उसको सीजेरियन से बाहर लाता है, उसी छुरी से कोई पेट काट के इसका लीवर काट दे तो इंसान मर जाएगा। कृत्य एक ही है, साधन भी एक है, किंतु एक जन्म देता है दूसरा मृत्यु देता है, एक आनंद देता है, दूसरा दुख देता है। तो कृष्ण कहते हैं, अरे भाई तुम्हारा मन पागल है क्या? तुम क्या अपने आप को देख रहे हो? अपने आप को टटोलने के लिए क्या करना है? टटोलने के लिए कुछ करना, क्या करना? अपने भीतर में जाना। जैसे कि आपके पास में एक चिंतन का एक यंत्र है, उस यंत्र को कभी क्या हमने उपयोग किया है क्या? ऐसे ही जैसे कि पेड़ के ऊपर में चिड़िया आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे मन में विचार आते हैं जाते हैं। यहां जो सुनते हो दिन भर उसके बारे में विचार करते रहो, रात में सोने के पहले फिर यहां आओ, बिस्तर में बैठे बैठे आओ, प्रेमपुरी जी के आश्रम में तीसरे माले में जो महात्मा कथा कर रहे हैं उस महात्मा के सामने बैठो, अपने बिस्तर में बैठे हुए महात्मा जी ने क्या कहा था सब सुनो, सोचो, फिर क्या हो जाएगा? बस वो फिर इंप्रेशन था, दिन भर में रिपीटिशन हुआ, रात में एसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि हम उस वस्तु विषय के अंदर चले जाएंगे। हमने क्या कह रहे थे कि किसी भी वस्तु विषय को देखने के लिए जब रूप कहेंगे तो रूप के साथ में कुरूप भी आएगा, जब हम सुख बोलेंगे तो सुख के साथ में दुख भी होगा, जब हम कहेंगे सुंदर श्वेत है सफेद है तो आकस्मिक ही सफेद के पीछे काले की कल्पना होगी। बड़ा बड़ा है, ये जो वकील लोग होते हैं ना कोर्ट में, वो सफेद पेंट पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, वो उसके ऊपर में काला कोट पहन लेते हैं। ये जब सफेद कपड़ा पहनते हो तो ऊपर काला पहनने की आवश्यकता क्या है? उसको उपाय नहीं है, कृष्ण ने बताया है कि भाई तो काला भी मैं हूं और सफेद भी मैं हूं, मेरा दिल तो साफ है, भले मेरा बाहर से रूप काला हो तो मैं क्या करूं। हाँ कृष्ण कन्हैया वो तेरा रंग काला क्यों? तो एक बार किसी ने, भगवान बुद्ध है तो उनको किसी ने कहा, वो प्रमुख शिष्य है भगवान बुद्ध का महाकाश्यप, ये कितना सुंदर सूर्योदय है। बुद्ध कुछ भी नहीं बोले, फिर कहा महाराज जी देखिए सूर्योदय हो रहा है, आकाश में लालिमा छाई हुई है, कितना सुंदर है देखिए। बुद्ध कुछ भी नहीं बोले, फिर कहा कुछ नहीं बोले, ऊपर देखा ताई देखा हंसे चुप रहे। वो काश्यप ने कहा क्यों कुछ नहीं बोलते हो, कुछ तो बोलो, मेरे मन में व्यग्रता आ रही है। बोले कि क्या बोलना है, सूर्य सूर्य है, लालिमा लालिमा है, प्रातःकाल प्रातःकाल है, उसमें सूर्य उसको सुंदर बोलने की आवश्यकता क्या है? रोज हो रहा है, अपने से हो रहा है, जो जैसा है उसको देखना वैसा। तो जब वैसा देखेंगे तो फिर वो सुख भी नहीं देगा, वो दुख भी नहीं देगा। अब मान लीजिए, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नींबू के पेड़ देखे, एक नींबू का है, एक संतरे का है, फिर एक हमारे मौसमी का पेड़ है, और नींबू छोटा नहीं, एक बड़ा नींबू भी होता है, गधा नींबू भी होता है, और एक होता है ग्रेप फ्रूट, उसको अंदर से लाल दिखाता है, गुजराती मुंह से चकोतरा, इतना बड़ा होता है। कभी इनके पेड़ों को देखो, इनके फूल बहुत खुशबूदार होते हैं, इतने खुशबूदार होते हैं क्या, रात में गए तो दिन में भी उनके निकट गए तो दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी मधुमक्खियां वहां बैठती है। कभी कोशिश करो, बहुत बारीक बारीक फूल, जितना बड़ा फूल फल होता है फूल भी उसका बड़ा हो जाता है। नींबू के फूल बहुत बारीक बारीक है, जी जाय के मापे, थोड़ा गुच्छा है तोड़ने की कोशिश करो, उसके ठीक नीचे इतना बुरा कांटा रहता है, तीन दिन तक रोते रहोगे। अभी ये कांटा कहां से बना, फूल कहां से बना? जो गुलाब के सुंदर सुंदर फूल लेके आते हो 50 रुपए में, ये 2 दर्जन फूल, उसमें कांटे कहां से आते हैं? जो जमीन में रस आता है, जमीन की जड़ से जो रस आता है, उस रस के अंदर में वे कांटे का रस अलग और फूल का रस अलग होता है क्या? बोलो ना। तो गुलाब में गुलाबी आ रहा है, गुलाब में एक नीला आ रहा है, एक सफेद आ रहा है, एक पीला आ रहा है। तो जिस धरती में आपने वो यहां एक पौध लगाई, एक फीट में दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, तो एक में गुलाबी रंग आ रहा है, एक में पीला आ रहा है, एक में श्वेत आ रहा है, और कभी कभी काले गुलाब भी होते हैं। तो ये मुझे बात बताएं कि वो जमीन के अंदर क्या अलग अलग खाद डाला है क्या? गुलाबी का खाद अलग है, लाल का खाद, वो तो खाद एक ही है, जमीन भी एक है, माली भी एक है, आकाश भी एक है, हवा भी एक है, किंतु उस पहाड़ के उस बहुत के अंदर से वही रस है, वो तना बना देता है, वही रस कांटा बना देता है, वही रस फूल खिला देता है, वही रस खुशबू कर देता है। कांटे का रस अलग नहीं होता है। कृष्ण बोलते हैं, जन्म तो मैं हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं, तय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ स्वर्गति प्रार्थयते। जब आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका जब पुण्य बढ़ेगा तो कृष्ण कहते हैं कि आप हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। अच्छी बात है। स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? अरे स्वर्ग में जाकर के सुख को भोगेंगे। कहां तक भोगेंगे? जब टिकट पूरी हो जाएगी बोले उतर जाओ, बस यही बात है। हाँ, कोई सिनेमा देखने जाते हो तो एक टिकट लेना पड़ता है। हाँ, बाबुलनाथ में गए तो, लिफ्ट में गए तो एक रुपये का टिकट देते, आठ आना ऊपर जाने का, आठ आना नीचे आने का। वो टिकट है वापसी में वो फाड़ देता है। दूसरी बार गए तो टिकट पूरा हो गया, फिर से नया दो। हमने जो क्या बोलते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति, जो कठोपनिषद कहता है हम स्वर्ग में जाएंगे, किंतु स्वर्ग में जाने के बाद में जब हमारे पुण्य पूरे हो जाएंगे फिर हम वापस आ जाएंगे। ऐसे ही आना जाना हमारा बना रहता है। तो जैसे नदी के दो किनारे हैं, तो हम कहेंगे पूर्व का किनारा हमको चाहिए, पश्चिम से कोई मतलब नहीं। बिना पश्चिम के किनारे के पूर्व किनारा संभव नहीं है, बिना रात्रि के दिन संभव नहीं है, बिना मृत्यु के अमृत भी संभव नहीं है। तो ये तमाम अवस्था में ये तमाम केवल भाषाओं का झगड़ा है, समझदारी का झगड़ा है। जैसे हमने कहा ये युवान से, क्या उम्र है? बोले के 40। हम उनसे पूछ रहे हैं, तुम बालक हो, युवान हो कि वृद्ध हो? बोले धीरे धीरे वृद्ध हो रहा हूं। तो कब वृद्ध होना चालू हुआ हमें पता नहीं है। वो एक जोड़ है, वो हमारी गति है। वो गति कहां है? जिस समय बच्चे का जन्म हो गया उस समय से प्रतिक्षण वो मृत्यु की ओर आगे यात्रा कर रहा है। जन्म के साथ में मृत्यु जुड़ा हुआ है। दिन सवेरे निकलने के साथ में सूर्य की गति उस अंधकार के प्रति हो रही है, रात ढलने के साथ में उस सवेरे के प्रति उसकी गति हो रही है। तो इन दोनों को हम पृथक ना समझें। कृष्ण कहते हैं भाई, जो तीनों वेदों में जो विधान किया है, सकाम कर्म करने की, जो सोम रस पीने की और पापों से पवित्र होने की, तो ये जो जाकर के इसको इंद्रलोक मिलता है, लेकिन इसको शब्दों का ख्याल करना। क्या कहा है उन्होंने? बात कही आत्यंतिक है, अल्टीमेट है, आखिरी है। लोग वेदों में जो कहा है उन कर्मों को, ये हमारे भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज है, महाप्रयाण करने लगे तो उनके शिष्यों ने भी कहा कि महाराज आपने इतना कुछ कहा है, कौन पढ़ेगा? हाँ, छोटा संक्षिप्त में कहो, कैप्सूल कोर्स। हाँ, अभी देखिए कैप्सूल कोर्स बोलने से याद आ गया, जो पहले है ना तिरुपति बालाजी का लड्डू इतना बड़ा होता था, एक 250 रुपए वाला बहुत बड़ा भी होता था, एक फीट वाला। अभी तिरुपति बालाजी का लड्डू छोटा हो गया है, अभी देखना वो कैप्सूल में भी मिलेगा। ये गुजरात में चले जाओ तो चाय अर्धी अर्धी मिलती है, अर्धी अर्धी। वो किटली लेके आता है, सबके हाथ में एक एक रका भी दे देता है, वो तस्तरी बोलते हैं, उसमें थोड़ा एक एक गूंद देते हैं। अभी तो अच्छा है कि तस्तरी में दे रहे हैं, एक मौका आएगा बोलेंगे मुंह खोलो दो दो ड्रॉप डाल दो। ये को उपाय नहीं है, वैसे तो करना ही पड़ता है। हाँ, हमने सुना ऐसा, भाई क्या करेंगे? तो जो टोटल है, हम लोग वेदों में जो कहा, भगवान भाष्यकार से कहा भाई इतना वेद कौन पढ़ेगा संक्षिप्त में, तो भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्तज्जताम। बोले वेदों को नित्य पढ़ना, कैसे पढ़ना? इतनी अच्छी प्रकार से पढ़ना कि वेदों में जो कुछ भी कहा गया है उसको तुम सुअनुष्ठीयताम, अपने प्रत्येक कर्म को अच्छे से करे। हाँ, ये काम पता भी ली दू, पूजा पता भी ली दी, रसोई पता भी ली दी, ऐसा नहीं है। ये खिचड़ी एक शब्द है, बोलिए खिचड़ी बोलिए। ये खिचड़ी पैदा कैसे हुई? ये खिचड़ी कैसे पैदा हुई? गुजराती कितना लोग जानते हैं? वो उस बोलते हैं खीज चढ़ी ने करी, गुस्से में आकर के दाल चावल लो खाओ। ये दाल ढोकड़ी कैसे हुआ है? ये सी हुआ दाल ढोकड़ी। हाँ, वो महिला बोलती क्या रोटी को अलग पकाओ, क्या दाल को, दाल में ही रोटी डाल दो, अपने आप पकता रहेगा। तो ये हमारे यहां नहीं है, विदेश में भी एक है, मैक्सिकन फूड भी है, इंची लाडा। हम लोग के यहाँ जो सांबार डोसा होता है ना, डोसा अलग सांबार अलग, तो वो डोसा बना के पूरा सांबार में डाल देता है, इंची लाडा खाओ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके भीतर जाना, उसके प्रवेश करना। क्या प्रवेश करना है कि ये जो अल्टीमेट जो है, लोग वेदों में कहा वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनु, हर कर्म को अच्छे से करो। ऐसे सोचो आज का दिन मेरा अंतिम है, कल का मुझे भरोसा नहीं है, आज किसी से क्लेश मत करो, समझो कल हम ना रहे तो परवाह नहीं, मैं आज मिलूंगा जिससे, गले से मिल जाऊंगा, आनंद से मिल जाऊंगा, आनंद बांटता हुआ चला जाऊंगा, आनंद में रहूंगा, दुखी नहीं होऊंगा, दुखी करूंगा नहीं और एक क्षण भी भगवान को भूलूंगा नहीं। कृष्ण कहते हैं भैया ऐसी भावना रखो, तभी तपा में हम जो हो जाएगा, तब आप गर्मी में रहोगे, वर्षात में भी रहोगे, जन्म में भी रहोगे, मृत्यु में भी रहोगे, कोई आपको फूल माला डाल ले तो बोलना धन्यवाद, और बोले तुम अभी क्या बोले महाराज जी, बोले तुम बेवकूफ हो, भी मैंने सुना बड़ा मजा आ गया, बोले बेवकूफ हो, कोई तुम्हें बेवकूफ बोल दे तब भी खुश रहना, चलो वही कृष्ण के साम्राज्य में वही विद्वान हम कहां होते हैं। तो तमाम अवस्था में, इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस ब्लिस एब्सोल्यूट, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूं, कैवल्य केवल कूटस्थ आनंद। तो कृष्ण हमको यही कहना चाहते हैं, हमारे सूत्रों में कहते हैं कि हमको जाना है तो लौट के भी आना पड़ेगा, क्योंकि वो पेंडुलम होता है ना, घड़ी का देखा है इसे, पेंडुलम देखा है ना, वो दाएं भी चलता है बाएं भी चलता है, नहीं नहीं मैं दाएं दाएं चलूंगा, मैं लेफ्टिस्ट पार्टी वाला हूं, मैं बाएं बाएं चलूंगा, ऐसे थोड़ा होता है, वो दाएं बाएं दोनों चलना पड़ता है। सूर्य बोलेगा नहीं पूर्व में रहूंगा, मेरे प्यारे तुमको पश्चिम में जाना पड़ेगा, क्यों, फिर से पूर्व में आने के लिए। तो हमारा जीवन जो है कि जिस कली को खिलाना चाहते हो, जिस गुलाब को चाहते हो, तो नीचे कांटे को आना ही पड़ेगा। तो ये हमारे जीवन में ठीक ऐसे ही सुख का एक आखिरी बिंदु, जहां से यात्रा शुरू होती है, द्वंद्व में मुक्ति नहीं है, यहां आना जाना नहीं है, तो मुझे कौन पा सकता है जो सत में है, क्योंकि मैं तो सत में भी हूं, मैं तो असत में भी हूं, मैं स्वर्ग में भी हूं, मैं नरक में भी हूं, मैं पाप में भी हूं, मैं पुण्य में भी हूं, दोनों को जो भेदभाव नहीं रखता है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जब आप कहते हो कि मुझको भेद है तो तुम प्राप्त नहीं हो सकते, यात्रा तो करनी पड़ेगी, किंतु यात्रा का गंतव्य वही है, क्या है, आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म। कृष्ण हमें यही कहते हैं, मन में द्वंद्व मत करो, क्योंकि मन है तो वो विभाजन करता है, उसको विभाजित मत करो। हमको कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि मन में रहो, क्या बोलते हैं, नमन, बोलो हाथ जोड़ते हैं ना, नमन न मन, बस यही न मन, बिना मन के रहो, फिर भी मन के साथ में रहो। ओम शांति शांति शांति। आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके सब हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण।